मनुस्मृति का तीसरा अध्याय आप आशुतोष कृष्ण शास्त्री से श्रवण कर रहे हैं। अथ तृतीयो अध्यायः ब्रह्मचर्य और वेदाध्ययन काल के बारे में प्रथम श्लोक में भगवान मनु कहते हैं, खड़त्रिंशदाब्दिकं चर्यं गुरौ वेदत् तिकं व्रतं तदर्तिकं पादिकं वा ग्रहाणांतिकमेव वा। 18वें वर्ष से आगे 36 वर्ष पर्यंत अर्थात वेद के सांगोपांग पढ़ने में 12-12 वर्ष मिलके 36 और 8 मिलके 40 अथवा 18 वर्षों का ब्रह्मचर्य और 8 पूर्व के मिलने 26 तथा 9 वर्ष तथा जब तक विद्या पूर्ण न हो जाए तब तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। समावर्तन के विषय में भगवान मनु कहते हैं, वेदानधीत्य वेदौ वा वेदं वापि यथा क्रमं अविप्लुत ब्रह्मचर्यो गृहस्थाश्रम वा वशेत। वेदान वेदौ वा वेदम यथाक्रमम अधीत्य ब्रह्मचर्य से 4, 3, 2 अथवा 1 वेद को यथावत पढ़ अविप्लुत ब्रह्मचर्य अखंडित ब्रह्मचर्य का पालन करके गृहस्थ आश्रम आवशेत गृहस्थ आश्रम को धारण करे। जब तक यथावत ब्रह्मचर्य आचार्यानुकूल वर्त धारण कर 4, 3, 2 अथवा 1 वेद को सांगोपांग पढ़कर जिसका ब्रह्मचर्य खंडित न हुआ हो वह पुरुष व स्त्री गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करे। समावर्तन से अभिप्राय, गुरु के समीप रहकर ब्रह्मचर्य व्रत को धारण कर वेद एवं वेदांग शास्त्रों की शिक्षा प्राप्त कर गुरुकुल से घर वापस लौटने का नाम ही समावर्तन है। यह प्रधानतया गृहस्थ धारण के उद्देश्य से किया जाता है। जो समावर्तन शब्द है इसका अर्थ ही वापस लौटना है। यह एक संस्कार है जिसे स्नान भी कहा जाता है। इसी कारण समावर्तक करने वाले को स्नातक कहा जाता है। स्नातक 3 प्रकार के बताए गए हैं, त्रयैव स्नातका भवन्ति विद्या स्नातको व्रत स्नातको विद्याव्रत स्नातकस्येति। एक तो विद्या स्नातक, दूसरा व्रत स्नातक और तीसरा विद्याव्रत स्नातक। समावर्तन काल और उसके आवश्यक नियमों के बारे में विवेचन करते हुए विद्वान कहते हैं कि उसके अनुसार समावर्तन के 2 प्रमुख नियम बताए गए हैं। एक तो त्रयी विद्या रूप 4 वेदों के अध्ययन काल में 36, 18, 9 वर्षों की 3 अवधि निर्धारित की गई है। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के लिए कम से कम 9 वर्ष तक गुरुकुल में रहते हुए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना अनिवार्य है। इसी के साथ साथ यह भी अनिवार्य है कि द्विज कम से कम 1 वेद का सांगोपांग अध्ययन करे। उससे अधिक 2, 3, 4 वेदों का अध्ययन करना उसकी इच्छा पर निर्भर है। इन दोनों नियमों को पूर्ण करके ही द्विज के लिए स्नातक बनकर गृहस्थ आश्रम धारण करने का विधान है, अन्यथा नहीं। इन नियमों तथा मनु के अन्य वचनों के अनुसार समावर्तन का काल कम से कम 25 वर्षों का अनंतर निर्धारित किया गया है। इसे 2 प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। उपनयन संस्कार में मनु ने उपनयन काल में कई कई विकल्पात्मक विधान किए हैं। सामान्य अवस्था में सबसे कम आयु 8 वर्ष में ब्राह्मण का उपनयन होता है। नव वर्ष में कम से कम एक वेद के सांगोपांग अध्ययन का काल है। वेद के अध्ययन से पूर्व उन्हें समझने के लिए प्रारंभिक शिक्षा एवं सामान्य वेदांगों, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, इन छहों का गंभीर ज्ञान आवश्यक है। इसमें वर्णोच्चारण शिक्षा से लेकर दर्शन उपनिषद तक 7-8 वर्ष का समय लगता है। इस प्रकार 8-8, 16 और 9-25 वर्षों का कम से कम प्रारंभिक वेद का पूर्ण शिक्षा काल बनता है। मनु ने 25 वर्ष तक गुरुकुल निवास का विधान किया है। इसके पश्चात गृहस्थ में जाने का कथन है। चतुर्थम आयुषो भागस ओषित्वादिगुरो द्विजः द्वितीयम आयुषो भागम कृतद्वारो गृहं वशेत। यह आयु का पहला भाग 25 वर्ष तक का समय है। जब तक विद्यार्थी गुरुकुल वास करे, पुनः समावर्तन कर गृहस्थ बने, इसी प्रकार प्रत्येक अवस्था में कम से कम 25 वर्ष का अध्ययन काल अवश्य होता है। उसके पश्चात ही समावर्तन करना मनुसम्मत है। तीसरे श्लोक में भगवान कहते हैं, तम प्रणीतम स्वधर्मेण ब्रह्मदाय हरम पितुः सृग्विणम तल्प आशीनम अर्हेत प्रथमं गवा। तम स्वधर्मेण प्रतीतम, जो स्वधर्म अर्थात यथावत आचार्य और शिष्य का मत है उससे युक्त, पितुः ब्रह्म दाय हरम, पिता अध्यापक से ब्रह्मदाय अर्थात विद्या भाग का ग्रहण, श्रग्विणम और माला का धारण करने वाले, तल्प आसीनम अपने पलंग में बैठे हुए आचार्य को प्रथमम गवा अर्हयेत, प्रथम गोदान से सत्कार करे। वैसे लक्षण युक्त विद्यार्थी को भी कन्या का पिता गोदान से सत्कृत करे। तीसरे श्लोक के उपरांत भगवान मनु चौथे श्लोक से और 6 श्लोक से तक विवाह के विषयों के बारे में बताते हैं। किस प्रकार विवाह करना चाहिए, गुरु की आज्ञा के उपरांत ही विवाह करना चाहिए, ऐसा भगवान मनु चतुर्थ श्लोक में कह रहे हैं। गुरुणानुमतः स्नात्वा समावृतो यथा विधि उद्विहेत द्विजो भार्या सवर्णाम लक्षणान्विताम। यथाविधि समावृत्य यथावत उत्तम रीत से ब्रह्मचर्य और विद्या को ग्रहण करके गुरुणा अनुमतः स्नात्वा, गुरु की आज्ञा से स्नान करके, द्विजाह ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सवर्णानाम अपने वर्ण की लक्षणान्विताम उत्तम लक्षणों से युक्त भार्याम स्त्री से उद्वहेत विवाह करे। गुरु की आज्ञा से स्नान कर गुरुकुल में से अनुक्रम पूर्वक आगे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अपने वर्णानुकूल सुंदर लक्षण युक्त कन्या से विवाह करे। विवाह से अभिप्राय के विवेचन में विद्वान कहते हैं, वी उपसर्ग वह प्रापणे धातु से घय प्रत्यय के योग से विवाह और उद उपसर्ग से इसका पर्यावाची उद्वाह बनता है, जिनका अर्थ है विशेष विधि पूर्वक एक दूसरे को प्राप्त करके पारस्परिक जिम्मेदारी का वहन करना। यह एक शास्त्र सम्मत सामाजिक विधान है जिसमें स्त्री पुरुष सुख सुविधा हेतु और गृहस्थ के कर्तव्यों का पालन करने के लिए दंपति के रूप में एक दूसरे के साथ रहने का निश्चय करते हैं और पारस्परिक दायित्वों को निभाते हैं। इस प्रकार रहकर संतानोत्पत्ति के द्वारा मानव वंश की अभिवृद्धि करते हैं। इनको मनुस्मृति में पाणिग्रहण संस्कार भी कहा गया है। इसका भी यही अभिप्राय है कि उपर्युक्त उद्देश्यों के लिए एक दूसरे का हाथ पकड़ना और सहारा देना। मनुस्मृति में स्त्री पुरुषों के विवाह की आयु के बारे में विवेचन करते हुए विद्वान कहते हैं कि मनु ने स्पष्टतः अत्यंत प्रसिद्धि के कारण इसका उल्लेख नहीं किया, किंतु अन्यत्र इसका स्पष्ट उल्लेख है। प्रसंगवश उस पर यहां विवेचन किया जाता है। वेदों में तथा शास्त्रों में मनुष्य की औसत आयु 100 वर्ष कही गई है।
तक्षुरदेवभितं पुरुस्ताक्षुक्रमक्षरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं सृणयाम शरदः शतं प्रवराम शरदः शतं मदीनाम श्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्।
इस औसत आयु के आधार पर मनु ने मनुष्य जीवन को निम्न 4 अवस्थाओं में विभाजित करके उसकी अवधि निर्धारण करी है।
चतुर्थम आयुषो भागम उषित्वाद्यम गुरो द्विजु द्वितीयम आयुषो भागम कृतदारो ग्रहम वशेत वनेषु च विहत्यैवं तृतीयम भागम आयुषः चतुर्थम आयुषो भागम त्यक्त्वा शंगान परिब्रजेत।
100 वर्ष की आयु के इस प्रकार 25-25 वर्ष के 4 भाग होते हैं। आयु के प्रथम भाग में अर्थात 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य पालन करना चाहिए। द्वितीय भाग में अर्थात 25 वर्ष के पश्चात गृहस्थाश्रम बनकर रहे। पुत्र का पुत्र होने पर, त्वचा केश पक जाने पर गृहस्थ से वानप्रस्थ बनकर तृतीय भाग अर्थात 75 वर्ष तक वन में रहना चाहिए और चतुर्थ भाग यानी कि 75 वर्ष से ऊपर सन्यास व्रत का पालन करना चाहिए। इस प्रकार से स्त्री की विवाह की आयु का संकेत भगवान मनु 9वें अध्याय के 90वें श्लोक में कहते हैं।
त्रीणि वर्षाणि यदीक्षेते कुमारेर्तुमतीशते ऊर्ध्वं तु कालदे तस्माद् विन्देत सदसंपतिम्।
अर्थात मासिक धर्म के प्रारंभ होने के 3 वर्ष पश्चात कन्या स्वयंवर कर सकती है। कन्याओं का मासिक धर्म का समय सामान्यतः 13 से 15 वर्ष की अवस्था में प्रारंभ होता है। 3 वर्ष के अनंतर यह काल 16 से 18 वर्ष की आयु का होना चाहिए। अतः कन्या के विवाह की कम से कम आयु 16 वर्ष है। 25 वर्ष का पुरुष 16 वर्ष की कन्या से विवाह करे, इससे अधिक आयु से में इतने ही अनुपात में विवाह करना चाहिए, क्योंकि प्रजनन सामर्थ्य तथा शरीर रचना की दृष्टि से 16 वर्ष की कन्या 25 वर्ष के पुरुष के तुल्य होती है। मनु ने विवाहोपरांत स्त्री के कर्तव्यों का जो वर्णन किया है, जैसे गृह कार्य में दक्ष होना, घर की साज सज्जा में निपुण होना, आय व्यय की लेखा जोखा करना, गृहस्वामिनी होना, सभी वस्तुओं का संभाल, धार्मिक अनुष्ठानों का संयोजन, इससे याज्ञात होता है कि अल्पायु में नहीं अपितु समझदार युवती के लिए विहित कर्तव्य है। इससे यह भी सिद्ध होता है कि कन्या की विवाह योग्य आयु 16 से 18 वर्ष के पश्चात ही होती है। आयुर्वेद की दृष्टि से अगर हम विवाह की आयु देखें तो
आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ सुश्रुत में शरीर की वृद्धि और क्षीणता के आधार पर चार अवस्थाएं प्रदर्शित की गई हैं और तदनुसार विवाह की आयु निर्धारित की गई है। सुश्रुत के सूत्र स्थान 35वें अध्याय के 25वें सूत्र में कहते हैं, चतस्रो अवस्था शरीरस्य वृद्धि यौवनम संपूर्णताम किंचित परिहारि चेति अषोडशात् वृद्धि आपंचविंशते यौवनम आचत्वारिंशतः संपूर्णताम ततः किंचित परिहारि चेति। शरीर की चार अवस्थाएं हैं, 16 वर्ष से 24 वर्ष तक वृद्धि बढ़ोतरी की अवस्थाएं, 25वें वर्ष से यौवन का प्रारंभ होता है और 40 वर्ष में यौवन की परिपक्वता होती है, उसके पश्चात शरीर की धातुओं में कुछ कुछ क्षीणता आने लगती है। यह युवावस्था ही विवाह के लिए उपयुक्त है, इससे पूर्व शरीर की धातुओं में अपरिपक्वता होती है। बाल विवाह से जहां शरीर की धातुओं का विकास रुक जाता है वहां गर्भ और संतान संबंधी अनेक आशंकाएं भी होती हैं, जैसे गर्भ का न रहना, गर्भस्राव, दुर्बल संतान का जन्म, शीघ्र मृत्यु तथा अस्वस्थ रहना इत्यादि।